सप्तोपरिकृता द्वारा पुरस्तस्यासतु द्वे अधा पृथक विषयागत्यर्थां तस्यां या कशनेश्वरा सप्तोपरिकृतादाराम् देयधा पृथक् विषयागत्यर्थां तस्याया कशनेश्वरा सप्त सात उपरि ऊपर कृता निर्मित द्वार द्वार पुरा नगरी के तस्या उस तू तब द्वे दो अधा नीचे पृथक भिन्न भिन्न विषया स्थानों तक गति अर्थम जाने के लिए तस्याम उस नगरी में यह जो कश्चन कोई भी ईश्वरा स्वामी अधिकक्ष अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा शिला प्रभुपाद की उस नगरी के नौ द्वारों में से सात तो भूतल पर थे और दो पृथ्वी के नीचे थे। कुल नौ द्वार बनाए गए थे और ये नौ द्वार भिन्न भिन्न स्थानों को जाते थे। इन सारे द्वारों का उपयोग उस नगरी का अधिकक्ष करता था। तात्पर्य शरीर के सात द्वार जो ऊपर स्थित हैं वे हैं दो आंखें दो नथुने दो कान तथा एक मुंह। दो अधोमुखी द्वार हैं गुदा तथा जननेन्द्रियां। इन समस्त द्वारों का उपयोग शरीर का राजा जो कि जीव है भिन्न भिन्न भौतिक आनंद उठाने के लिए करता है। विभिन्न स्थानों के लिए भिन्न भिन्न द्वारों का होना आज भी भारत के प्राचीन नगरों में पाया जाता है। पहले राजधानी चारों ओर से दीवारों से घिरी रहती थी और विभिन्न शहरों या दिशाओं में जाने के लिए विभिन्न द्वारों से होकर जाना होता था। पुरानी दिल्ली में आज भी कश्मीरी गेट लाहौरी गेट जैसे विभिन्न द्वार तथा चार दीवारी के ध्वंस अवशेष विद्यमान हैं। इसी प्रकार अहमदाबाद में दिल्ली द्वार है। इस उपमा की मुख्य बात यह है कि जीव विभिन्न भौतिक ऐश्वर्यों का भोग करना चाहता है और प्रकृति ने इस हेतु शरीर में अनेक छिद्र बनाए हैं जिन्हें वह इंद्रिय भोग के लिए काम में ला सकता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोवेष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदांतिकम्। वंदेयं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाक्ष च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथं तं सजीवम् सावदेतम सावदूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखा नमिता। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज श्रीमद् भागवतम कक्षा में श्री वृंदावन धाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्री कृष्ण बलराम मंदिर की ओर से आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और यहाँ अनेक वरिष्ठ भक्त बैठे हुए हैं, उन सब से मैं कृपा याचना करता हूँ कि श्रीमद् भागवतम पुराण के ऊपर हम आपकी कृपा से कुछ चर्चा कर सकें आज के श्लोक पर। हरे कृष्ण। तो जैसा कि आप सुनते आ रहे हैं, राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन, राजा प्राचीन परिषद को नारद मुनि राजा पुरंजन के गुणों के बारे में बता रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको इसका संक्षेप में बताएं कि राजा प्राचीन भरे शर के पुत्र जब प्रचेता तपस्या के लिए समुद्र में गए तो राजा प्राचीन भरिषद सकाम कर्मों में लग गए, कर्म कांड में लग गए। तो ये देख करके नारद मुनि को उनके ऊपर काफी दया आ गई कि राजा प्राचीन भरिषद ये कर्म कांड करके ये अपना कौन सा परम कल्याण करने जा रहे हैं। तो इतना उनके मन में जिज्ञासा हुई, उनके प्रति दया का भाव हुआ। तो देखा गया है कि नारद मुनि, नारद का अर्थ है जो सबको नारायण दे दे, नार मतलब नारायण, द मतलब देने वाले, जो नारायण को दे दें उसको नारद कहते हैं। तो इसी प्रकार से नारद मुनि जिन जिन के भी जीवन में आए उन सबको उन्होंने नारायण दिया, चाहे रत्नाकर डाकू वाल्मीकि महर्षि बने उनको नारायण दिया, चाहे ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज मृगारी जो पशुओं का वध करता था पक्षियों का, नारद का काम है जिनसे मिले उनको नारायण दें। और हमको चाहिए कि हम सबको अपने जीवन में नारद के चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में भी जो आए है ना, हम उनको नारायण दे सकें, कृष्ण दे सकें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शिला प्रभुपाद भी नारद मुनि हैं, हमारे संस्थापक का आचार्य, उन्होंने कितनों को देश में विदेश में सबको कृष्ण प्रदान किया। तो नारायण मतलब नारद मुनि मतलब जो नारायण प्रदान करते हैं। तो आज के श्लोक में बताया जा रहा है कि उस नगरी के नौ द्वारों में से सात तो भूतल पर थे और पृथ्वी के नीचे दो थे, कुल नौ द्वार बनाए गए थे। तो जो राजा पुरंजन है, राजा पुरंजन हम सभी हैं। राजा पुरंजन की जो कथा है वो सब जीवों की कथा है। नारद मुनि पुरम मतलब होता है नगर, और उस नगर में रहने वाला जन व्यक्ति जो नगर में रहे उसको पुरंजन कहते हैं। उसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो पुरम यानी नगर और जन मतलब व्यक्ति। जैसे आज भी हम देखते हैं कई शहरों के नाम पुरम या पुर के हिसाब से होते हैं, जैसे रामपुर, सीतापुर और बहुत सारे हैं, इंदिरापुरम बहुत सारे हैं, है ना, नाम हैं जो पुर के हिसाब से, पुर का मतलब होता है नगर। तो यहां पर नारद मुनि राजा प्राचीन भरिषत को जो जीव है उसके शरीर की जो तुलना है वो नगर के हिसाब से, नगर के तुलना कर रहे हैं, नगर से उसकी तुलना कर रहे हैं। तो शरीर की तुलना कभी कभी नगर से की जाती है और कभी कभी शरीर की तुलना यंत्र आरूढ़ानि मायाया, एक यंत्र के द्वारा यानी एक वहीकल के द्वारा की जाती है कि हम सभी इस भौतिक शरीर यूपी यंत्र पर यानी इस सवारी पर, इस गाड़ी पर हम लोग सवार हैं। तो कभी नगर से इसकी तुलना की जाती है, कभी इसकी तुलना एक भौतिक वहीकल से यानी गाड़ी से की जाती है, और कभी कभी इस शरीर की तुलना एक किराए के मकान से भी की जाती है, रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी। वी आर ऑल लिविंग इन दिस रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी। तो सब ये समझाने की बातें हैं। तो इसलिए यहां पर नारद मुनि बता रहे हैं और तात्पर्य में शिला प्रभुपाद लिखते हैं कि शरीर के जो सात द्वार हैं वो स्थित हैं, शरीर मतलब नगर, तो दो आंखें, दो नथुने, दो कान और एक मुंह, और दो अधोमुखी द्वार हैं गुदा तथा जनेन्द्रिया। इन समस्त द्वारों का उपयोग राजा का शरीर, राजा जो है जो कि जीव है, भिन्न भिन्न भौतिक आनंद उठाने के लिए करता है। तो यहां नीचे प्रभुपाद लिखते हैं कि आज भी देखा जाता है कि राजधानी में गेट बने हुए हैं, जैसे दिल्ली गेट है, कश्मीरी गेट है, लाहौरी गेट है, अनेक प्रकार के गेट बनाए जाते हैं और पहले सारे राजधानी को दीवारों से उसको सुरक्षित कर दिया जाता था और बाहर निकलने के लिए, प्रवेश करने के लिए इस तरीके से द्वार बनाए जाते थे। तो अब सोचने लायक बात यह है, विचार करने लायक बात यह है कि ये द्वार क्यों बनाए जाते थे, क्या कारण था कि राजधानी को द्वारों से सुरक्षित किया जाता था। द्वारों से सुरक्षित इसलिए किया जाता था कि कोई भी शत्रु हमला न कर दे। जैसे ही शत्रु के आने का आभास हो वैसे ही द्वारों को बंद कर दिया जाए और चौकस हो जाए कि कोई शत्रु आक्रमण न करे, इसीलिए द्वार बनाए जाते थे। और आज अगर हम इस पुर को देखें, ये जो नगरी है, ये जो यंत्र आरूढ़ानी माया, या ये जो भौतिक ये जो यंत्र है, इसके जो द्वार हैं, यहां बताया गया है कि राजा उन द्वारों के द्वारा उसको भोग करना चाहता है, आनंद उठाना चाहता है। राजा पुरंजन नारद मुनि बता रहे हैं, केवल आनंद उठाना चाहता है। लेकिन केवल अगर आनंद उठाएंगे तो क्या होगा, द्वार खुले रहेंगे, और द्वार अगर खुले रहेंगे तो कभी भी शत्रु प्रवेश कर सकता है। ये भी तो नगरी है, इसके द्वार भी हैं, तो हमको हर वक्त चौकस रहना चाहिए कि शत्रु जो हैं, जो इस नगर पर आक्रमण कर सकते हैं, इस शरीर रूपी नगर पर कौन आक्रमण कर सकता है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये छह शत्रु इन द्वारों से प्रवेश कर सकते हैं और आक्रमण कर सकते हैं। काम एषा क्रोध एषा रजोगुणा समुद्भवा महाशनो महापापमा विधेय एनम यह वैरिणम। ये महापापमा काम और क्रोध, भगवान कहते हैं ये क्या है, सर्वभक्षी हैं, मनुष्य का सर्वनाश करने वाले हैं। और हमने इस नगरी के द्वार खोल रखे हैं, कभी भी कोई शत्रु प्रवेश कर सकता है, कोई चिंता नहीं है। और आज तो हम आमंत्रण निमंत्रण देते हैं, आइए शत्रुओं को हमारे इन द्वारों के द्वारा प्रवेश कीजिए। बड़े बड़े चैनल्स हैं टीवी के माध्यम से, सिनेमा के माध्यम से, बहुत सारे माध्यम हैं कि ये शत्रु जो है कभी भी हमारे इन द्वारों में प्रवेश कर सकते हैं और सर्वभक्षी हमारा सर्वनाश हो सकता है। कथा आपने सुनी होगी अजामिल की, है ना। माता पिता ने नाम अजामिल रखा, अजा का मतलब माया, माया से मिलना, अजामिल यानी माया रूपी वैश्या से उसका मिलन हो गया। कौन से द्वारों से, कौन से द्वारों से शत्रु ने प्रवेश किया, इन आंखों से, इन आंखों के द्वारों से प्रवेश किया अजामिल, अपने को रोक नहीं पाए, शत्रु ने आक्रमण कर दिया। श्री विश्व मंगल ठाकुर उनके भी ऊपर चिंतामणि नामक वैश्या ने आक्रमण किया, है ना, और इतने अधीर हो गए विश्वमंगल ठाकुर, सब भूल गए, घर बार पत्नी सब भूल गए। एक ही लक्ष्य था, किस तरीके से चिंतामणि का मेरे को संग मिले, चिंतामणि के साथ मैं रहूं। नदी के पार चिंतामणि का घर था, रोज सुबह से रात तक वहीं रहते थे, भूल गए सब। एक दिन जा नहीं पाए, पिता का श्राद्ध था, कुछ देर हो गई, लेकिन शाम होते होते बड़ी व्याकुलता बढ़ गई, बड़ी व्याकुलता बढ़ गई। नदी में बाढ़ आई हुई थी, जाने का रास्ता नहीं था, कोई नाविक नहीं था, लेकिन जैसे तैसे करके नदी में छलांग लगाई, नदी में छलांग लगा दी और एक शव को नाव समझ करके नदी के पार हो गए। और वहां जाकर के देखा कि चिंतामणि भी मेरे लिए बड़ी व्याकुल है, उसने भी एक रस्सी लटका रखी है मुझको अपने तक पहुंचाने के लिए। उस रस्सी को पकड़ के वो चिंतामणि के घर में पहुंचे। चिंतामणि देख करके हैरान हो गई कि तुम इस वक्त आधी रात को यहां, इस वक्त कैसे? उसने कहा, आप ही ने तो मेरे लिए सारी व्यवस्था करी, आपने रस्सी लटकाई। बोले, मैंने तो कोई रस्सी नहीं लटकाई। तो जाकर देखा तो वो सांप था, सांप को पकड़ के जो है बिल्व मंगल ठाकुर वहां पहुंचे। भोग करने की प्रबल इच्छा सब जीवों में रहती है, सब जीवों में भोग करने की प्रबल इच्छा रहती है। तो बिल्व मंगल ठाकुर को जब समझाया चिंतामणि ने, और ये एहसास हुआ कि ये जो मार्ग है, ये भोगों का मार्ग, ये हमारा इससे कुछ भला होने वाला नहीं है, और उन्होंने फैसला किया कि आज के बाद हम लोग क्या करेंगे, हरि भजन करेंगे। चिंतामणि उनके गुरु बन गए बिल्व मंगल ठाकुर के। बिल्व मंगल ठाकुर एक साल तक हरि भजन किया और वृंदावन धाम जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन जब वृंदावन धाम जाने लगे तो रास्ते में फिर एक स्त्री से मोहित हो गए, फिर एक स्त्री से मोहित हो गए। उस स्त्री के घर में जाते हैं, उनको बड़ी ग्लानि होती है और उससे कहते हैं कि तुम मुझे अभी अपनी जरा जो बालों में माताएं पिन लगाती हैं वो दो पिन उनसे मांगी, और उन दो पिनों से उन्होंने अपने इस नगरी के दो द्वार बंद कर दिए हमेशा के लिए। ये तो ऐसे द्वार है, यहां से शत्रु आ ही आ रहे हैं, यानी अपनी आंखें फोड़ डाली। बिल्व मंगल ठाकुर पे भगवान की कृपा हुई और उन्हें साक्षात दर्शन हुए। तो ये जो द्वार हैं, ये जो इंद्रियां हैं, ये द्वार इंद्रियां हैं, और इंद्रियों के पीछे मन है। एक अंग्रेजी में कहावत है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। मन, मुख जो होता है वो दर्पण होता है मन का। हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं वो निश्चित रूप से हमारे मुखमंडल पर प्रदर्शित हो जाते हैं। हमारा स्थूल शरीर जो इन पांच महाभूत से बना, यानी पांच भूत ही हमारे पीछे पड़ गए हैं, पांच भूत इस जीवात्मा के पीछे पड़ गए हैं अनादि काल से। व्यक्ति भूल गया, मनुष्य इस समाज में भूल चुका है कि मेरे जीवन का अंत भी आ सकता है। उसको क्या चाहिए? उसको केवल भौतिक भोगों में लालसा हो गई है, तो वो इंद्रिय तृप्ति चाहता है, इस जीवन को भोगना चाहता है, लेकिन भोग भोग के वो दुखी भी हो जाता है, क्योंकि जितना भोगी होगा उतना रोगी होगा। जितने भोग हम भोगेंगे, याद रखिए, उतने रोग हमको सताएंगे। लाठियां माया की खानी पड़ती हैं, क्योंकि जब तक हम अज्ञानी हैं, जब तक ज्ञान का अभाव है, तब तक हम दुखी रहेंगे। हमारे को समझना चाहिए कि हमारा यहां जन्म क्यों हुआ, क्या कारण है, किस कारण से हम यहां हैं, किस कारण से हैं इस संसार में, व्यक्ति क्यों आता है और क्यों चला जाता है, इस बात की जिज्ञासा होनी चाहिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं क्यों आया हूं। तो इस बात को ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में, ब्रह्म संहिता में बताते हैं, और उसका बड़ा सुंदर तात्पर्य भी है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य च चेष्टते स गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। ये भौतिक जगत की सृष्टि जो होती है क्यों होती है, भौतिक जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय की साधन कारण चित शक्ति की छाया स्वरूप माया शक्ति, जो कि सभी के द्वारा दुर्गा नाम से पूजित होती है, जिनकी इच्छा के अनुसार वे चेष्टाएं करती हैं। यानी दुर्गा जी जो भी यहां कार्य करती हैं, जो भी चेष्टाएं करती हैं, वो गोविंद की इच्छा से करती हैं। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं, क्या चेष्टाएं करती हैं, क्या कार्य करती हैं। तो बताया गया है कि जीव जो है वो तटस्थ शक्ति से उत्पन्न होता है। बहिरंगा शक्ति, भगवान की तीन मुख्य शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति और अतरंगा शक्ति। तटस्थ शक्ति से जीव उत्पन्न होने के कारण कृष्ण की सेवा भूल जाता है, तो उसको संसार रूपी कारागार यानी दुर्गा के दुर्ग में बंद कर दिया जाता है, और इस स्थान पर दंड देने का एक ही डंडा है। हम सबको जो दंड दिया जाता है इस संसार में, इस दुर्गा के दुर्ग में हम सब कैद हैं, और यहां दंड देने का एक ही मार्ग है, और वो है कर्म चक्र। कर्म चक्र से हम सबको दंड दिया जाता है। इन दंडित जीवों को शुद्ध करने का कार्यभार दुर्गा को दिया जाता है। दुर्गा का यह कार्य है कि जितने भी जीव कृष्ण को भूल गए, कृष्ण भूली से ही जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। जो जीव कृष्ण को भूल गए हैं, तो माया यानी दुर्गा उसका यह कार्य है कि उसको संसार के दुख प्रदान करे, और संसार के दुख प्रदान करके उसको धीरे धीरे उसको शुद्ध करें। कैसे, कब जाकर के जीव जो है वो दुख पाकर के कब वो कृष्ण की तरफ, कब गोविंद की तरफ वो मुख करेगा। ये जो बहिर्मुख हो गया, अनादि काल से बहिर्मुख जीव, जब माया के दुख पाता है तो कहीं उसका जब भाग्य उदय होता है तो वो कृष्ण की तरफ अंतर्मुख होता है, कृष्ण की तरफ मुख करता है। बहिर्मुख जीव कृष्ण की तरफ मुख करता है, यही कार्य है। तो हम सब जीव जो इस भौतिक जगत में है, कृष्ण को भूल करके भोग करना चाहते हैं। भोग करते हैं और करते करते भोग करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन भोगों को प्राप्त नहीं कर पाते। जितना भोग भोगने की इच्छा होती है, जितना भोग भोगते हैं, उतने हमारे हृदय में आग और बढ़ती है। जितना भोग हम भोगेंगे, भोगों से संतुष्टि नहीं हो सकती, संतुष्ट नहीं हो सकते। भोग तो भोगते हैं, देखिए भोग भोगने के लिए हमारा मन का साथ होना बहुत जरूरी है। अगर मन हमारा साथ में नहीं है और भोग हम भोगते हैं, तो उन भोगों में हमारे को आनंद नहीं आ सकता। ये एक साइंटिफिक बात है, एक वैज्ञानिक तथ्य है कि अगर हम इस संसार में कुछ भोग भोगना चाहते हैं तो इंद्रियों के साथ हमारे मन का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको सुंदर थाली में सुंदर पकवान दे दिए जाएं खाने के लिए, तरह तरह के व्यंजन दे दिए जाएं खाने के लिए, लेकिन आपका मन अगर उस थाली में नहीं है, उस व्यंजनों में नहीं है, आप खा करके भी उन व्यंजनों का आनंद नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आपका मन कहीं और लगा है। तो मन हमारा जो है वो शांत हो नहीं सकता। भौतिक जगत में जितने भी जीव हैं, बाहर से चाहे वो आपको कितना भी अच्छा बताएं, मैं बहुत अच्छा हूं, आई एम वेरी मच सेटल्ड, मेरा ये है, इतना मेरा बैंक बैलेंस है, इतने मेरे फ्लैट्स हैं, लेकिन उनका मन शांत नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान कहते हैं, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। जो ये जान लेता है वही शांति को प्राप्त करता है। अब भौतिकता में लीन व्यक्ति शांति को प्राप्त कर नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण से बहिर्मुख है। जब कृष्ण से बहिर्मुख है, मन अशांत है, आप कितना भी भोग भोगने का प्रयास करो, आप भोग भोगेंगे लेकिन आप उस भोग में आनंद नहीं उठा पाए, आनंद नहीं उठा सकते आप। दिखाई देता है, बड़े बड़े मखमली बिस्तर दिखाई देते हैं लेकिन नींद दिखाई नहीं देती। नींद कहां? नींद की गोली चाहिए। हमारे भक्तों को जो कृष्ण की सेवा में लगे हैं, कितने लोग रात को नींद की गोली खा के सोते हैं? शायद ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। तो भोग मिल सकते हैं भौतिकवादी व्यक्ति को, लेकिन भोगने की उनकी क्षमता नहीं होती। दिखाई देता है कि भोग रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, लेकिन वो सुख वो प्राप्त नहीं कर पाते। आज हिंदुस्तान के बड़े से बड़ा व्यक्ति मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, चाहे 12,000 करोड़ का मकान बना दें, क्या वो सुखी हैं? कोई सुखी नहीं। तो जब तक मन आपका साथ नहीं होगा तो आप भोग भोग नहीं सकते, और मन आपका अशांत रहेगा जब तक आप कृष्ण को परम भोक्ता नहीं मानेंगे। इसीलिए संसार जो है ये दर दर भटक रहा। जब तक कृष्ण के दर पे आके माथा नहीं टेकेगा, इस संसार में व्यक्ति दर दर भटकता ही रहेगा। हे गोविंद, या तेरा दर या दर बदर, व्यक्ति दर बदर रहता है, पूरा जीवन भटकता रहता है। और दूसरी बात है कि जो ऐश्वर्य हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। एक ऐश्वर्य होता है जो कर्मों से हमको प्राप्त होता है। हमारे कर्म ऐसे हैं, हमने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए कि हमको भौतिक सुख प्राप्त हो गया, ऐश्वर्य प्राप्त हो गए। और दूसरा जो ऐश्वर्य होता है वो कौन सा होता है? वो होता है आध्यात्मिक ऐश्वर्य। भौतिक ऐश्वर्य वो समाप्त हो जाते हैं, क्षीणे पुण्य मृत्ये लोकम विशन्ति, समाप्त हो जाते हैं, कुछ समय के बाद भौतिक ऐश्वर्य नहीं रहते। लेकिन आध्यात्मिक ऐश्वर्य जब भगवान प्रदान करते हैं किसी भक्त को, है ना, प्राय देखा जाता है कि जो नव दीक्षित भक्त होते हैं, भगवान उनसे प्राय ऐश्वर्यों को छीन लेते हैं, उनके सुखों को छीन लेते हैं। इसलिए कि ये जो मेरी शरण में आया है, अगर इसको मैं भौतिक सुख प्रदान कर दूंगा तो ये मेरे को भूल जाएगा, मेरी भक्ति को भूल जाएगा। तो भगवान के शरण में जो भी जीव आता है, भगवान उसको व्यक्तिगत रूप से उसके साथ व्यवहार करते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ये नहीं समझना चाहिए कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करने वाला हर व्यक्ति को भगवान एक ही तरीके से व्यवहार करते हैं। हर व्यक्ति के कर्म, हर व्यक्ति के पूर्व जन्म अलग अलग होते हैं, हम नहीं जानते। भगवान कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानी च अर्जुना भविष्यवाणी च भूतानि माम तु वेद न कश्चना। मैं तुम्हारे भूतकाल को जानता हूं, तुम कब कौन से जन्म में तुम क्या थे मैं जानता हूं, वर्तमान तुम्हारा मैं जानता हूं, भविष्य तुम्हारा मैं जानता हूं, लेकिन हे अर्जुन तुम नहीं जानते। तो जब जीव सौभाग्य से चाहे माया की लाठियां खा करके, चाहे भक्तों की संगति पा करके, कैसे भी करके जब कृष्ण की शरण में आता है तो कृष्ण इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनको मूर्छा आ जाती है, मूर्छा आ जाती है कि ये मेरा अंश, ये मेरा अंश जो है अब मेरी तरफ मुड़ा है, अब इसने कई जन्मों के बाद आकर के भागवतम और भगवत गीता हाथ में उठाई है, अब इसको भक्तों का संग प्राप्त हुआ है। तो भगवान बड़े प्रफुल्लित हो जाते हैं और भगवान उसके साथ फिर निजी रूप से व्यवहार करते हैं कि इसको किस मात्रा में, कितनी मात्रा में, कितना सुख देना है और कब देना है कि ये मुझसे विलग न हो जाए। जितनी हमारे अंदर इच्छा है भगवान को प्राप्त करने की, श्री भगवान को हमसे मिलने की हमसे तीव्र इच्छा है। भौतिक भोग जो होते हैं वो सीमित समय के लिए होते हैं, लेकिन जब भगवान ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, जब भगवान ने बलि महाराज को ऐश्वर्य प्रदान किया वो शाश्वत होता है, जब भगवान ने ध्रुव महाराज को ऐश्वर्य प्रदान किया वो शाश्वत होता है, वो समाप्त नहीं होता। जब वामन भगवान के द्वार पर, वामन भगवान जब इंद्र के द्वार पर आ गए, इंद्र ने उनसे क्या याचना की, उनसे याचना की कि मुझको मेरा स्वर्ग लोक लौटा दिया जाए। जो बलि महाराज ने उनसे छीन लिया था वो स्वर्ग लोक मुझको लौटा दिया जाए। तो भगवान ने उनकी इच्छा को पूरा किया, बलि महाराज से वो स्वर्ग लोक लेकर के उनको लौट आया। लेकिन बलि महाराज कहते हैं भागवतम में कि ये इंद्र जो इतना बुद्धिमान होते हुए भी इसने कोई बुद्धिमान पूर्वक कार्य नहीं किया। भगवान उसके द्वार पर आए और उसने भगवान के चरणों की भक्ति न मांग करके केवल स्वर्गलोक ही मांगा, जो कि देवताओं का जो जितना भी स्वर्ग है, जितने भी उसके ऐश्वर्य हैं, वो एक मनमंत्र से अधिक नहीं चलते। एक मनमंत्र यानी कि 72 चतुर्युग में वो समाप्त हो जाता है। लेकिन जो भगवान ऐश्वर्य प्रदान करते हैं वो शाश्वत होता है, शाश्वत होता है। लेकिन समाज जो है इन भौतिक काम, भौतिक वासनाएं, इसमें रह करके अपने को संतुष्ट करना चाहता है, संतुष्ट हो नहीं सकता, कितना भी हम प्रयास कर लें संतुष्ट नहीं हो सकता। शिला प्रभुपाद भगवत गीता यथा रूप के शुरू में जो आमुख है, पृष्ठ आमुख, उसके आखिरी पहरे में लिखते हैं कि इस कलयुग में सामान्य जनता कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित है और उसे यह भ्रांति है कि भौतिक सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बन सकेगा। उसे इसका ज्ञान नहीं कि भौतिक या बहिरंगा प्रकृति अत्यंत प्रबल है, क्योंकि हर प्राणी प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा बुरी तरह जकड़ा हुआ है। सौभाग्यवश जीव भगवान का अंश रूप है, अतः उसका सहज कार्य है भगवान की सेवा करना। मोहवश मनुष्य विभिन्न प्रकारों से अपनी इंद्रिय तृप्ति करके सुखी बनना चाहता है। हम अपने को संतुष्ट करना चाहते हैं, किंतु इससे वह कभी सुखी नहीं हो सकेगा। अपनी भौतिक इंद्रियों को तुष्ट करने के बजाय उसे भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है, भगवान यही चाहते हैं और इसी की अपेक्षा रखते हैं। मनुष्य को भगवद गीता के इस केंद्र बिंदु को समझना होगा, भगवान हमसे क्या चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि हम कृष्ण के साथ अपने संबंध को जोड़ के कृष्ण की सेवा करें और इस अशाश्वतम दुखालय से बाहर निकलें। लेकिन जो सामान्य भौतिकता में लीन व्यक्ति है, वो भौतिक भोगों से अपने को संतुष्ट करना चाहता है। तो भागवतम में प्रार्थना करते हैं जम्बूद्वीप के निवासी, भगवान से कहते हैं, अहो विचित्राम भगवत चेष्टिताम घनंतम जनोयम मिशन न पश्यति ध्यायान सद्यारे विकर्म सेवितों निर्हत्य पुत्राम पित्राम जिजीवशति। अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि मूर्ख संसारी सिर पर नाचती हुई मृत्यु की परवाह नहीं करता, यह जानते हुए भी कि मृत्यु ध्रुव है तो भी वह उसके प्रति उदासीन और लापरवाह रहता है। चाहे उसके पिता की मृत्यु हो अथवा पुत्र की मृत्यु क्यों न हो, वह उसकी संपत्ति का उपभोग करना चाहता है। प्रत्येक दशा में वह प्राप्त साधन से किसी की परवाह किए बिना संसारिक सुख का उपभोग करने का प्रयत्न करता है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी का कथन है, श्री भगवान की इच्छा से घटने वाली भौतिक सुख की ये लीलाएं कितनी विचित्र हैं। ये भौतिक सुख की जो लीलाएं हैं ये कितनी विचित्र हैं। अहो विचित्रम भगवत विचेष्टितम। तो यहां बताया गया है कि भौतिकतावादी व्यक्ति सभी प्रकार के दुष्कर्म करना चाहता है, किंतु श्री भगवान की इच्छा के बिना कोई कुछ भी कर नहीं सकता। यानी जो दुष्कर्म भी हैं वो भी जो जीव करना चाहता है वो भगवान की इच्छा के बगैर नहीं हो सकते। तो प्रश्न आता है, फिर भगवान दुष्कर्म करने की अनुमति क्यों देते हैं? जब हम जीव की भगवान की संतान हैं और भगवान जानते हैं कि ये दुष्कर्मों में लगा हुआ है, और दुष्कर्म करने की अनुमति भगवान क्यों देते हैं? तो यहां शिला प्रभुपाद बताते हैं कि श्री भगवान नहीं चाहते कि कोई व्यक्ति पाप करे। भगवान नहीं चाहते कि हम पाप करें। उन्हें पाप से दूर करने के लिए अंतःकरण से याचना करते हैं। भगवान हमारे अंतःकरण में है, सर्वस्य चाम हृदि सन्निविष्टो मता स्मृति ज्ञानम पूर्णम च। और भगवान याचना करते हैं कि आप ये पाप पूर्ण कार्य मत करो। किंतु जब कोई पाप करने पर उतारू हो जाता है कि नहीं, मेरे को तो ये कार्य करना ही है, तो भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि भगवान कि उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसके स्वयं के दायित्व पे उसको छोड़ देते हैं कि आप इस कार्य को अपने दायित्व पर पूरा कर। और व्यक्ति जो है अपने सिर पर नाचती हुई मृत्यु को नहीं देखता और भोगों में लिप्त हो जाता। एक बंगला में कहावत है, घुते पोरे गोबर हंसे, सूखा गोबर जलता है, गीला गोबर हंसता है। गीला गोबर सूखे गोबर को देख करके हंसता है कि देखो ये जल रहा है, लेकिन उसको ये मालूम नहीं कि कुछ समय के बाद वो भी सूखने वाला है और वो भी जलने वाला है। और यही बात युधिष्ठिर महाराज बताते हैं यमराज जी, जब पूछते हैं कि आपको इस संसार में सबसे आश्चर्यजनक क्या लगा, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं अन्य अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति इह यमालयम् शेष स्थावरम् इच्छन्ति किम् आश्चर्यतम परम। इस संसार में प्रतिदिन असंख्य जीव यमराज के लोक में जाते हैं, फिर भी जो बचे रहते हैं वे यहां पर स्थायी पद की आकांक्षा करते हैं, भला इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। तो हमको समझना चाहिए इस बात को, अपने मन को समझाना चाहिए। हमारे आचार्य कहते हैं यू बीट योर माइंड, अपने मन को रोज पीटिए, यू प्लीड योर माइंड, अपने मन को तर्क से समझाइए, और प्रभुपाद ने फिर कहा यू एंगेज योर माइंड, केवल अपने मन को आप एंगेज कर दो भक्तों के साथ, अपने को एंगेज रखो। क्योंकि मन जो है, मन को अगर कुछ समय भी हम खाली देंगे तो ये जो द्वार हैं जिसकी आज चर्चा हुई है, इस नवद्वारी नवद्वार, इसमें जो है हम उलझ जाएंगे, कभी भी शत्रु प्रवेश कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं सर्वकर्माणि मनसा संन्यासते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देही नेव कुर्वन्न कार्यान, कि इस नवद्वारे पुरे में हम कैसे सुखी रह सकते हैं जब देहदारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता। अपनी प्रकृति मतलब अपने मन को वश में कर लें, अपनी बुद्धि को वश में कर लें और समस्त सकाम कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वे नौ द्वारों वाले इस नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रह सकता है, भगवान कहते हैं। लेकिन अर्जुन कहते हैं चंचलम हे मना कृष्णा प्रमाथि बलवद्रणम तस्या अहम निग्रहम मन्ये वायोर एव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल है, उच्छृंखल है, हटीला है तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को भी वश में करने से अधिक कठिन लगता है। भगवान कहते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च ग्रह्यते। अभ्यास के द्वारा और वैराग के द्वारा आप इस मन को क्या कर सकते हो, चंचल मन को वश में ला सकते हो। अभ्यास वैराग, संसार से वैराग्य और भगवान से राग। अभी हमारा क्या है, संसार से राग भगवान से वैराग, इसीलिए माया तारे दे संसार दुख। और हमारे मन में कितनी भी भौतिक वासनाएं हैं, भौतिक कामनाएं हैं, लेकिन अगर हम येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयति, किसी प्रकार से मन को कृष्ण में निवेश करने का करने में हम सफल हो जाते हैं, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारती, किसी भी प्रकार से, चाहे हमारे अंदर कोई कामना है चाहे हमारे अंदर कोई कामना नहीं है, मोक्ष की कामना है। तीव्रे न भक्ति योगे न यजितम पुरुषम परम, हमें तीव्रता के साथ भगवान की भक्ति करनी चाहिए, कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। कृष्ण का नाम और कृष्ण का रूप, कृष्ण की कथा में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण के साथ जैसे जैसे हम वास करेंगे, हमारी जो भौतिक कामनाएं हैं वो जो संतुष्ट करने लायक होंगी, जो पूर्ण करने लायक होंगी, भगवान उनको पूर्ण करेंगे। जो पूर्ण करने लायक नहीं होंगी, भगवान उसके बीज को ही नाश कर देंगे। अब इच्छा ही नहीं है, अब इच्छा नहीं बड़े बंगले की, अब इच्छा नहीं बड़ी गाड़ी की, भगवान अब आप जैसा मेरे को रखोगे मैं वैसा रहूंगा। संतुष्टि, पूर्ण संतुष्ट, पूर्ण आनंद, केवल क्या करने से, केवल भगवान का नाम जप करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहीं पे आज विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवत पुराण की जय।